डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने अपने अकीदे बना लिए। फवाइलुल लदीना ज़लमू मिन अज़ाब यौमिन अलीम, तो वैल है, हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया अजाब से दर्दनाक दिन के, यानी उस दिन के अजाब से वैल, यानी वैल का मतलब क्या, हलाकत और जहन्नुम की एक वादी भी है। जिन्होंने जुल्म किया, जुल्म कौन सा किया, शिर्क का, उनके लिए उस दिन दर्दनाक, यौमिन अलीम दर्दनाक दिन, वो दिन दर्दनाक है। यहाँ पे दिन की सिफत बयान की गई कि वो दर्दनाक है, अजाब दर्दनाक दिन के। अल्लाह अकबर। हल यंजुरूना इल्ला सा, क्या वो यही इंतजार कर रहे हैं कि क्यामत ही आ जाए तब ये मानेंगे, यानी जब इंसान पूरी, हम भी तो इस तरह से अपने बच्चे को कहते हैं ना कि तुम फिर क्या इसी चीज का इंतजार कर रहे हो कि तुम फेल ही हो जाओ तो फिर ही तुम्हें समझ आएगी। तो कहा जा रहा है कि ये बात को समझ क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये सूरत अब इख्तिताम की तरफ जा रही है, तो बिल्कुल एंड पे जाके ये एक धमकी आमेज इनके साथ तरीके से बात की गई। अल्लाह अकबर, कि क्या वो इंतजार कर रहे हैं मगर कयामत का, ये और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, इल्ला सा मगर कयामत का, सा घड़ी, अंतत्यहुम बगता, के वो आ जाए उनके पास अचानक से। ये सवाल नहीं है, बल्कि हल वैसे सवाल के लिए होता है, बल्कि इसमें जिसको कहते हैं इस्तफहाम इनकारी, कि क्या वो यही बस इनका पूछा नहीं जा रहा, क्या वो इनकार कर, वो इसका इंतजार कर रहे हैं, नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका है, वाज में ये भी तरीका होता है, एक धमकी आमेज तरीका, कि वो यही चाहते हैं कि बस कयामत आ जाए तो फिर ही वो सही होंगे, और वो अचानक आ जाएगी, वह हमला यशून, और उनको शऊर भी नहीं होगा। देखिए इंसान की जो मौत है, जितने लोग इस अकीदे के ऊपर मर रहे हैं, तो क्या है उनका, वो तो अचानक से मौत आ गई और उनको पता भी नहीं होता, वो तो एक है चीज, लेकिन जो कयामत है वो तो इतनी अचानक होगी, जो मौत भी इंसान के लिए तो कयामत शुरू हो गई ना, जिन्होंने कयामत को अभी नहीं देखा वो मर चुके हैं, उनकी कयामत शुरू हो चुकी है, हिसाब किताब शुरू हो गया, लेकिन जो कयामत है वो इतनी अचानक आएगी, इसका क्या मतलब है कि अचानक से आएगी। अचानक से आने का मतलब ये है कि उसकी कोई टाइम नहीं बताया जाएगा, कोई फोरकास्ट नहीं होगी, जैसे आप तूफान आने लगता है कोई, या और कोई सुनामी है या कोई और है, तो उसकी कुछ ना कुछ पहले से इंडिकेशन हो जाती है, जो पहले से ऐलान होने लगते हैं, जी बड़ा तूफान आ रहा है, बड़ा हरिकेन आ रहा है, बड़ा फलां चीज आ रही है, कुछ ना कुछ फोरकास्ट में बताया जाता है, लेकिन जो कयामत होगी वो इतनी अचानक होगी कि उस दिन भी नहीं पता होगा कि आज का दिन कयामत का दिन है, इतनी बड़ी हौलनाकी होने वाली है, छोटी छोटी चीजों पे बता दिया जाता है, छोटे छोटे तूफानों पे, वो छोटे ही हैं कयामत के मुकाबले में, उनका बताया जाता है, लेकिन कयामत की कोई भी नहीं इंडिकेशन होगी कि कोई ऐलान हो जाए, कोई पता चल जाए, तो नॉर्मल होगा, यानी इस हदीस से आप देख लेना कि एक बंदा अपना हौज ठीक कर रहा होगा, यानी वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, अपने डे की जो काम है, इसी तरह एक बंदा थान फैलाए हुए कपड़े का लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, इसका मतलब बाजार भी चल रहे होंगे, वरना तो मार्केट्स बंद हो जाती हैं, हर चीज क्लोज हो जाती है, जब कोई बड़े तूफान की कोई पेशीन गोई होती है तो ऑफिसेस बंद कर दिए जाते हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, हर चीज बंद हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चलता है कि बिजनेस एज यूजुअल होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, लोगों को ये गुमान भी नहीं होगा कि आज के दिन कयामत आ जानी है। वो अपना काम शाम कर रहे हैं, एक बंदा खाना खा रहा है, उसने निवाला उठाया मुंह की तरफ ले जाने लगा, इतनी अचानक कयामत आएगी, और ऐसे भी नहीं होगा कि स्लोली स्लोली कुछ हो रहा है, जैसे अब ये तूफान वगैरह आते हैं तो बारिश शुरू हुई फिर उसके बाद एकदम तूफान में बदल गई, या ऐसे हुआ कुछ, ऐसे भी नहीं होगा, अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कि ऐसे होगा कि वो अपना निवाला मुंह तक नहीं ले जा सकेगा, कि कयामत आ जाएगी वहीं पे खत्म सब, वो थान जो बेच रहा है वो अभी बेच के उसको काट नहीं सकेगा कि वो कयामत आ गई, आप अंदाजा कीजिए कितनी अचानक होगी। अब वो शऊर भी नहीं रखते होंगे। यानी कयामत तो बहुत हौलनाक है, क्या ये उसका ही इंतजार कर रहे हैं? और ये हम सबके लिए एक तंबीह है, हम सबके लिए एक वार्निंग है कि क्या हम कयामत का ही इंतजार कर रहे होते हैं? बस नेकियां करने के लिए, अपने आप को फिक्स करने के लिए, अपनी रूटीन को सही करने के लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, इसलाह करने के लिए, क्या हमें कयामत का ही इंतजार है? कई जगह पे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, क्या इनको इसका इंतजार है कि अब फरिश्ते उतर जाएं और अल्लाह ताला खुद आ जाए फरिश्तों के साथ और डे ऑफ जजमेंट शुरू हो जाए, हशर का मैदान लग जाए, इसका ही इंतजार करें? क्या ये इसका इंतजार करें कि यहाँ पे भी जैसे कहा गया कि वो साथ आ जाए, वो घड़ी आ जाए? अब हम कहते हैं नहीं जी, वो तो बहुत दूर है अभी, इसके लिए अभी हमें फिक्र करने की क्या जरूरत? अभी कहाँ, ये तो निशानियां पूरी नहीं हुई, अभी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना, अभी तो अगर मौत आ गई वो भी तो इंसान की कयामत ही है। उसके बाद उसको क्या, भले से जो जमीन के नीचे चला गया, उसके उसकी बला से कयामत 100 साल बाद आए या 10,000 साल बाद आए, उसका तो बुक ऑफ डीड्स बंद हो गई ना, अमालनामा क्लोज्ड है उसको। इससे फिर क्या, दुनिया क्या कर रही है या क्या हो रहा है, वो तो अब कयामत के दिन ही उठेगा ना। ऐसी एक जगह पे चला गया कि अमल अब उसके लिए खत्म हो गया, तौबा का दरवाजा बंद हो गया, उसके लिए कयामत तो शुरू हो गई। तो हम किस चीज का इंतजार करते हैं? नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, जो कयामत की खुद निशानियां बताने वाले थे, वो कभी न डर नहीं हुए थे इससे कि कयामत आ जाएगी। तो रातों को उठ के लोगों को कयामत से डराते थे। उबई इब्ने काब फरमाते हैं कि जब रात का तहाई हिस्सा गुजर जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े जाते थे, फरमाते थे लोगो अल्लाह को याद करो, लोगो अल्लाह को याद करो, लोगो अल्लाह को याद करो, कांपने वाली आ रही है। जात रौजिफा, आ गई कांपने वाली और उसके बाद झटके पे झटका होगा, और आ गई मौत अपनी सख्तियों के साथ और मौत करीब है। तो लोगों को डराते थे, लेकिन आज ना डरना हम चाहते हैं ना अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, क्योंकि डरना क्यों नहीं चाहते कि फिर जिंदगी फिक्स करनी पड़ेगी? फिक्स करना नहीं चाहते, इसी मजे में रहना चाहते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपकी सारी दुनिया की ख्वाहिशात पूरी हो जाए, जो आप चाहते हैं वो सब हो जाए, और पूरी दुनिया की दौलत भी आपको मिल जाए, सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त मौत आ गई, तो सब क्या काम का रहा? सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाश जलेगा बन जाए सब पड़ा रह जाएगा, फिर मोहलत नहीं मिलती। आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं, कल हिसाब का दिन होगा अमल का नहीं। हमने अमल के लिए आखरत को छोड़ा था शायद, कि उस वक्त जाके अमल कर लेंगे। आज अमल का दिन है, आज अल्लाह ताला हिसाब नहीं ले रहा, जो मर्जी करते रहो। देखिए मैं सूरह कहफ पढ़ूं या ना पढ़ूं जुमे को, कौन सा मुझसे किसी ने आके पूछना? मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं, मुझे कौन सा कोई पूछेगा? किसी को पता ही नहीं चलना कि ये झूठ बोल रही है, किसने देखना है? हाँ, मैं चीट करूं या ऑनेस्ट रहूं, किसी को थोड़ी पता चलेगा कौन है मेरे ऊपर खड़ा हुआ? कोई भी नहीं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं, कोई मुझे देखने वाला नहीं। मैं हिजाब लूं या ना लूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि ना लूं तो लोग ज्यादा तारीफें करेंगे, ज्यादा मैं इन रहूंगी। इस वक्त मेरे ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं, मेरे ऊपर अल्लाह ताला कोई भी फैसला नहीं दे रहा। आज आजादी है, करें या ना करें हमारी मर्जी है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अब एडल्ट भी हो गए हैं, वो माँ का डंडा भी नहीं है कि नमाज पढ़ो, खड़े हो जाओ, सुबह उठो, फजर हो गई है, कोई सर पे सवार होने वाला भी नहीं, कोई भी कुछ भी कहने वाला नहीं। हम आजाद हैं, करें या ना करें, लेकिन जिस दिन हिसाब का दिन होगा ना, फिर आजादी खत्म हो जाएगी, फिर सिर्फ जवाबदेही होगी। अब हमें अमल करने मुश्किल लगते हैं, मन नहीं मानता ना, फिर कह देते हैं हाँ क्या करें, दुनिया के साथ भी चलना है। असल में वो जो दुनिया है ना, उसकी जगह लिख लें, मेरा मन नहीं मानता। दुनिया के साथ भी चलना है, अपने मन के साथ भी चलना है, असल बात ये है। दुनिया नहीं कुछ होती, अपना मन ही नहीं मानता, अपना मन ही पापी है। इसका ही दिल नहीं करता अल्लाह की फरमा बरदारी करने का। तो वो जब अचानक आ जाएगी तो उस दिन क्या करेंगे ये क्या उसी का इंतजार कर रहे हैं, इसी का वेट है उनका कि फरिश्ते आ जाएं कि चलो तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, घंटी बज गई, पर्चा इधर दो, अब कुछ एक लफ्ज भी नहीं लिख सकते, क्या इसका वेट कर रहे हैं। उस वक्त कितना भी कहेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरह मुनाफिकून क्या एंड है, अल्लाह ताला ने फरमाया अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन अन यातिया अहदकुमुल मौत, खर्च कर लो इससे पहले कि वो दिन आए कि मौत आ जाए, फिर तुम कहोगे ए अल्लाह मुझे मोहलत दे दे कि अस्सदका वकुम मिन अस्सालिहीन, कि मैं सदका भी कर लूं और मैं नेकों में से हो जाऊं, उस वक्त क्या फायदा, उस वक्त ये कहने का क्या फायदा, उस वक्त इन हसरतों का क्या फायदा। तो इंसान कि जब मौत आती है तब उसके उस वक्त उसको ये होता है कि वो ख्वाहिश करता है कि काश अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, तो वो जो इतना टाइम तुम्हें मिला रहा वो ये बात सबके लिए एक वेकअप कॉल है कि तुम इसका इंतजार करते हो। वो जब दिन आ जाएगा ना तो अल अखिल्ला योम इज़िन बादुहुम ले बादिन अदू, गहरे दोस्त वो जो बड़ी करीबी दोस्तियां थी आज के दिन उनमें से बाज बाज के लिए दुश्मन हो जाएंगे। पक्की दोस्तियां दुनिया में तो इतनी पक्की थी, हम प्याला हम निवाला, इकट्ठे जाना इकट्ठे आना मिल के सारे काम करना, वो तो सारे दुश्मनियों में बदल जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन सिवाय मुत्तकीन के, उनकी दोस्ती जो अल्लाह की खातिर दोस्ती हो। देखें दोस्तियां कई तरह की होती हैं, इब्ने उसैमीन ने तीन तरह की दोस्तियां बताई हैं। फरमाते हैं कि जैसे एक दोस्ती वो होती है जो टाइम पास दोस्ती होती है, वो तो आजकल बहुत ही कॉमन है टाइम पास दोस्ती, मतलब है कि आपने मेरी पार्टी कर ली मैंने आपकी पार्टी कर ली, इसकी दावत पे चले गए उस पे खुशगप्पियां कर ली, इधर की बातें उधर की बातें फोन पे लंबी लंबी बातें, टाइम पास हो रहा है बस ठीक है, यह किसी के काम की नहीं है ये दोस्ती, ये कुछ नहीं होगी, ये कयामत के दिन ये भी दुश्मनी होगी। दूसरी एक दोस्ती होती है जो मफाद की दोस्ती होती है, जब तक फायदा चल रहा है दोस्ती दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती है, जिस दिन अपना मफाद खत्म हुआ, जो भी मफाद था चाहे वो किसी से कोई चीज चाहिए थी, किसी से कोई काम करवाना था, या किसी से कोई ये था कि कल को ये मेरे काम आएगा या कुछ है, अब वो तो बेचारा बिल्कुल ही अल्लाह रहम करे वो उसको कुछ हो गया, वो तो किसी काम का ही नहीं रहा, या उसका वो ओहदा ही छिन गया जिसकी वजह से दोस्ती की हुई थी, या जिसकी वजह से ये थी कि भाई अच्छा जी कल को मैं बीमार हो जाऊं तो ये मेरे काम आएंगे, तो अब वो तो खुद ही बीमार हो गया, तो फिर तो वो तो दोस्ती खत्म, मफाद की दोस्ती थी ना कोई फायदा था उसके साथ रिलेटेड कि ये फायदा मुझे ये पहुंचाएगा, एक उम्मीद होती है ना उसकी खातिर वो दोस्ती की होती है, चाहे पैसा था चाहे जो भी कोई सर्विसेज थी, ये भी अक्सर आजकल आप देखते हैं। और एक दोस्ती है जो सिर्फ अल्लाह की खातिर दोस्ती होती है, ये दोस्ती जो होती है इसमें इंसान दूसरे को खैर की बात करता है, खैर की तरफ बुलाता है और शर से मना करता है। अगर आपने अपनी दोस्तियों को चेक करना है, आप अपने दोस्त को जो भी आपके दोस्त हैं उनको खैर की तरफ बुला के देखें या किसी गलत काम से रोक के देखें, अगर तो अल्लाह की खातिर दोस्ती होगी तो वो फिर आपकी बात को बहुत पसंद करेगा और कहेगा कि हाँ भाई ठीक है, और वो मान जाएगा हाँ भाई ये मेरी गलती है और वाकई मुझे ये फिक्स करनी चाहिए। और वो अल्लाह की खातिर नहीं दोस्ती होगी तो वो माइंड कर लेगा आपसे, नाराज हो जाएगा और कहेगा कि तूने मुझे ये क्यों कहा, क्योंकि वो दोस्ती अल्लाह की खातिर थोड़ी थी, वो तो दोस्ती सिर्फ मफाद के लिए थी या टाइम पास वाली दोस्ती थी। ये जो नेकों की दोस्ती होती है ना आपस में, ये इस दुनिया में भी फायदा देती है, क्योंकि दूसरा आपको नेकी की तरफ बढ़ाता है, यानी उसमें एनकरेज करता है मोटिवेट करता है, आपको शौक होता है नेकी करने का, बुराई की तरफ आप जाने लगते हैं तो वो आपको पीछे से पकड़ता है कि नहीं देखो ये नहीं करना चाहिए, या हमें इससे बाज आना चाहिए, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं, ठीक है। लेकिन जो दोस्ती अल्लाह की खातिर नहीं होती ना, उसके अंदर इस चीज की परवाह नहीं होती कि किस चीज में कोई दूसरा जा रहा है या कोई क्या कर रहा है, इससे कोई परवाह नहीं है, बल्कि क्या है बस अपना मफाद है या जब तक इंजॉय कर रहे हैं तो दोस्ती चल रही है, इंजॉयमेंट की दोस्ती है। अच्छा, जो नेक दोस्त की दोस्ती, वो दुनिया में तो फायदा दी, अब मरने के बाद क्या फायदा होगा? देखिए, जब वो मरता है तो उसके नमाज जनाजा नेक दोस्त पढ़ते हैं, जब वो दुनिया से चला भी जाता है तो उसके लिए पीछे से दुआएं करते रहते हैं, उसके लिए दुआएं मफरत। लेकिन आप देखेंगे जो टाइम पास वाली या मफाद वाली दोस्ती होती है ना, ठीक है अब बहुत हुआ तो उसके जनाजे में आ जाएंगे रस्में दुनिया के तौर पे, लेकिन वो चला गया तो अब चला गया, अब हमारी पार्टियों में वो पहले पार्टियों की रौनक होता था, तो अब क्या, वो गया तो गया, अब कौन इसको याद करे? उसको याद करना भी गवारा नहीं, उसके लिए दुआ करना तो दूर की बात है। तो वो लोग फिर जब अल्लाह की खातिर दोस्ती होती है तो फिर वो लोग उसके बाद उसके बच्चे हैं या उसके घर वाले हैं उनको देखते हैं, क्योंकि ये दोस्ती सिर्फ अल्लाह के लिए थी ना, ये दोस्ती मफाद की नहीं थी ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर आखरत में भी जाके, कयामत के दिन भी, ये दोस्त एक दूसरे के साथ होंगे, ये दोस्तियां खत्म नहीं होंगी वहां जाके भी, क्योंकि हज़रत अली फरमाते हैं दो ईमानदार जब आपस में दोस्त होते हैं तो जब उनमें से एक का इंतकाल हो जाता है और अल्लाह की तरफ से उसे जन्नत की खुशखबरी मिलती है, तो वो अपने दोस्त को याद करता है और कहता है, ए अल्लाह, फलां शख्स मेरा दिली दोस्त था, तेरी और तेरे रसूल की इताअत का मुझे हुक्म देता था, भलाई की तरफ मुझे बुलाता था, बुराई से मुझे रोकता था, मुझे यकीन दिलाया करता था एक दिन अल्लाह ताला से मिलना है। तो यहां तक कि ए अल्लाह, एक रोज उसे मिलना है, फिर ए अल्लाह उसे राहे हक पे साबित कदम रखना, यहां तक कि उसे भी तू वो दिखा दे जो मुझे दिखाए, यानी जन्नत, और उससे भी उसी तरह राजी हो जाए जैसे मुझसे राजी हुए। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है कि तू मुतमईन हो जा, इसके लिए मैंने वो तैयार कर रखा है कि मैं, अगर तू उसे देख ले तो तू आजुर्दा हाल ना हो, यानी तू उदास ना हो और बहुत खुश हो, और जब दूसरा दोस्त मरता है और उनकी रूहें मिलती हैं तो कहा जाता है तुम आपस में एक दूसरे का ताल्लुक बयान करो, फिर हर एक दूसरे से कहता है ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़ा अच्छा भाई था, नहायत नेक साथी था, नहायत अच्छा दोस्त था। और जब दो बुरे दोस्त होते हैं तो जब, चाहे वो काफिर हैं चाहे वो बुराई के ऊपर हैं, जब एक मरता है जहन्नम की तरफ, जब जहन्नम की खबर दिया जाता है तो अपने दोस्त को याद करता है, कहता है या बारी ताला, फला मेरा दोस्त था, तेरी और तेरे नबी की नाफरमानी की तालीम मुझे देता था और तेरे हुक्मों पे चलने की कोशिश करता था तो वो मुझे पीछे खींचता था बजाय हौसला देने के, मजाक करने लगता था, मना करता था और फिर मुझे बुराइयों की तरफ रगबत दिलाता था और तेरी मुलाकात ना होने का मुझे यकीन दिलाता था। जैसे आज कह जाते ना, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही मौलवियों ने बातें बनाई हुई है, छोड़ो इन बातों को, अगर हमने इतना सा कर लिया तो क्या हो गया, सारी दुनिया करती है, छोड़ो नमाज भी हो जाएगी, तुम क्या मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, भाई ये नहीं हमसे होता, हम इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, आखिर दुनिया को साथ लेके चलना होता है, इस तरह की बातें। तो वो कहता है कि अल्लाह तू इसे हिदायत ना देना, और वो भी वो कुछ देखे जो मैं देख रहा हूं, और उस पर इसी तरह नाराज होना जैसे तू मेरे ऊपर हुआ। फिर जब दूसरा दोस्त मरता है और उनकी रूहें जमा होती हैं तो उनसे भी यही कहा जाता है, तुम दोनों एक दूसरे के औसाफ बयान करो, दोनों कहते ये मेरा बड़ा बुरा दोस्त था। देखिए अब दोस्ती ये कयामत के दिन दुश्मनी में बदल जाएगी, जो ऐसी दोस्ती होगी, और जो अल्लाह की खातिर होगी होगी, तो जब दो शख्स अल्लाह की खातिर दोस्ती करते हैं तो चाहे एक मशरक में और एक मगरब में हो, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला उनको जमा करेगा, ये मेरी खातिर दोस्ती करने वाले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों के घर जन्नत में तुम्हें इस तरह नजर आएंगे जैसे मशरक या मगरब से तुलू होने वाला सितारा। लोग पूछेंगे ये कौन है, उनको कहा जाएगा ये अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। यानी अल्लाह की खातिर दोस्ती रखते थे, अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें सिखाया भी है कि मोमिन के सिवा किसी की सोहबत इख्तियार ना करो। लोग आजकल पूछते हैं ना, देखे हम फिर उनके साथ इसलिए दोस्ती रखते हैं कि उनको हम खैर की बातें बताएं, वरना उनको कौन बताएगा। देखिए वो दोस्ती नहीं होगी, दिली दोस्ती नहीं होगी, वो एक ताल्लुक हो सकता है आपका अपने कुलीग्स के साथ है, क्लास फेलोज के साथ है, जो के काफिर हैं या जो के फासिक फाजिर हैं, लेकिन आप उनके साथ दिली दोस्ती तो नहीं कर सकते कि सोहबतें उनकी इख्तियार की है। नबियों ने भी सालहीन की सोहबत अल्लाह ताला से मांगी, वलहकनी बिसालहीन, ये फरमाया। और आप सरसरम ने फरमाया तुम्हारा खाना सिवाय मुत्तकी के कोई ना खाए। खाना आप उसको खिलाते हैं जिसकी दावत करते हैं, आप बुलाते हैं उसको अपने घर, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके लिए खाना तैयार करते हैं, तो इसका मतलब मुत्तकी के सिवा तुम्हारे कोई दस्तरखान पे ना आए। नेक लोगों को अपने दस्तरखान पे बुलाओ, क्योंकि आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है ना। अफसर सलम ने ये बता दिया हमें, तो देखो तुम किससे दोस्ती करते हो। जिससे दोस्ती करोगे जाहिर है उसके तरीके आपके अंदर जरूर आ जाएंगे। वो आपको पता है वो मिसाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि अच्छा दोस्त, नेक दोस्त खुशबू बेचने वाले की तरह, और बुरा दोस्त भट्टी झोंकने वाले की तरह। और भट्टी झोंकने वाला तो कपड़े जला ही देगा, नहीं तो स्मेल तो आने लगेगी। आप देख लें दुनिया के अंदर कितने लोगों को सिगरेट पे किसने लगाया, उनके दोस्तों ने। बेहयाई की चीजें देखने पे किसने लगाया, दोस्तों ने। नशे पे किसने लगाया, दोस्तों ने। तो बिगाड़ इंसान के अंदर बुरे दोस्तों की वजह से आता है। किसी के माँ बाप उसको नहीं सिखाते कि जो है ना तुम बुरे हो जाओ, तुम ये गंदी चीजें करो, ये गंदे काम करो। दोस्त ही होते हैं, तो इंसान जहां अपने बच्चों के दोस्तों पे नजर रखता है, अपने दोस्तों पे भी तो नजर रखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे को जानती हूँ जो खुद इंतहाई बड़े अच्छे होते हैं, और उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल होता है, बहुत पोटेंशियल के बहुत आगे जा सकते हैं दीन में। लेकिन क्या है, सिर्फ बुरे दोस्तों की वजह से। दोस्त ऐसे हैं बनाए हुए, उनकी पक्की दोस्तियां नहीं छोड़नी, उन्हीं के साथ बस उठते बैठते हैं। अब वो दोस्त कहाँ आने देंगे दीन की तरफ, ना ये उनको छोड़ते हैं ना वो इनको इस तरफ आने देते हैं अल्लाह की तरफ, ना इनको खींचते ही रहते हैं पीछे। अब ये कभी एक स्टेप लेते भी हैं तो चार स्टेप फिर पीछे चले जाते हैं दोस्तों की वजह से। तो क्यों नहीं हम अपनी कंपनियां चेंज करते, क्या वजह है कि क्या हमें वो दोस्त इतने प्यारे हैं कि वो अल्लाह से भी दूर कर दें। हमने इनसे नहीं दूर होना चाहिए, अल्लाह से दूर होना हमें गवारा हो जाता है। हम उनकी बुरी सोहबतों में बैठ के बुराइयां करते हैं और बुरी चीजें सीखते हैं और गफलत में चले जाते हैं। हमें दुनिया से मोहब्बत होने लगती है और अल्लाह से दूरी होने लगती है। वो मजलिस नहीं, आपको अंदर से कोई अलार्म नहीं बजता कि जो ये मेरे लिए दोस्ती सही नहीं है, इसके साथ बैठ के बस मैं दुनियावी बातें और दुनिया और इसकी दौड़ और पैसा और फैशन और कपड़े और फिल्में और ड्रामे और फलां और फलां और फेसबुक और ये और ये और इन्हीं चीजों के ऊपर मेरी बात होती है, मेरा शौक इन्हीं में बढ़ जाता है, मैं इन्हीं के लिए और ज्यादा यानी इसके अंदर, इस रास्ते के अंदर दौड़ने लगती हूँ। मैं वापस आती हूँ तो और मेरी नमाजें खराब होती हैं, नाशुकरी मेरे अंदर आ जाती है, कनात खत्म हो जाती है, मुझे लगता है मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं, मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरा तो घर अच्छा ही नहीं, मेरे पास तो वो सब चीजें ही नहीं, बस मैंने इसमें और आगे बढ़ना है, क्योंकि देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन ये अगर कोई कंपनी आपको ये सब दे रही है, इस तरह की सोच आप लेके उठ रहे हैं, इस तरह के ख्यालात के साथ उठ रहे हैं, तो क्यों नहीं चेंज करते? क्या एक दोस्ती को अल्लाह की खातिर कुर्बान नहीं कर सकते? सहाबा ने तो अपने वालदैन को, किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने बाप को, किसी ने अपने चचा को, उनको कुर्बान कर दिया अल्लाह के रास्ते में, या उनसे ताल्लुक खत्म हो गए उनके अल्लाह के रास्ते में। या अल्लाह को नहीं छोड़ना, तुम नाराज होते तो होते रहो, हम इतनी सी दोस्तियां नहीं छोड़ सकते। कोई किसी के साथ आप बैठते हैं तो वो म्यूजिक ही चलाए रखते हैं, किसी के साथ आप बैठते हैं तो कहते हैं चलो आओ नाचते हैं गाते हैं, बस ये दुनिया है, मौज मस्ती की जगह है। तो देखना चाहिए कि हमारी बातें क्या होती हैं, हम जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं हमारी किस चीज का शौक बढ़ता है, कहाँ पे हमारा दिल अब उन चीजों से उचाट हो जाता है जो हम कर रहे थे बुराई की, कहाँ हम बैठते हैं तो हमारे अंदर नेकी का शौक है और बुराइयों से नफरत होने लगती है, अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। तो अगर ऐसे दोस्त नहीं मिलते तो बुरे दोस्त बनाने से दोस्त ना होना बेहतर है। क्योंकि बुरे दोस्त आपको बुराई की तरफ ही लेकर जाएंगे। और कयामत के दिन इंसान अपने हाथों को चबाएगा, कुरान कहता है, अपने हाथों को चबाएगा और कहेगा, हाय काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। क्योंकि बुरे दोस्त तो जहन्नुम की तरफ ही लेकर जाएंगे, नाफरमानियों पे उकसाते हैं, बल्कि गुनाहों को खूबसूरत करके दिखाते हैं। फिर क्या हो गया, तो क्या हो गया, फसाद डालते हैं, लगाइयां बुझाइयां करते हैं, गिबतों में लगाते हैं, बुरे मशवरे देते हैं, तौबा की तरफ नहीं आने देते। तो क्या ये सब हमें गवारा है? इसीलिए अपनी कंपनी पे सब नजर डालें, सब देखें कि हमने किसको अपना साथी बनाया हुआ है, किसके साथ हम रहते हैं। इसी तरह जिनकी शादियां नहीं हुई वो अपने लिए ऐसे ही साथी ढूंढे, क्योंकि उनकी सोबत में तो सबसे ज्यादा रहना होता है। मियां बीवी सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ होते हैं ना, वो भी साथी ही है ना। तो कि भाई मैं अपना ऐसा साथी ढूंढूं कि जो मुझे नेकी की तरफ लेकर जाए, जिसमें दीन का शौक हो, अल्लाह की मोहब्बत हो। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन फरमाएगा, मेरे जलाल की वजह से एक दूसरे से जो मोहब्बत करने वाले हैं वो कहाँ हैं। आज के दिन जब मेरे साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, उस वक्त मैं उनको साया दूंगा। अल्लाह ताला के अर्श का साया उनको मिलेगा जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते थे और अल्लाह की खातिर बोझ रखते थे। इसी तरह एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज्जा वजल फरमाता है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए तयशुदा है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और मेरी मोहब्बत उनके लिए तयशुदा है जो मेरी खातिर एक दूसरे पर खर्च करते हैं, और मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए तयशुदा है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। और अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले नूर के मिंबरों पे होंगे उस दिन, अर्श के साए तले होंगे, जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया ना होगा। तो सोचें जरा कितना बड़ी बात है कि जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मुलाकात इसलिए नहीं बस उसने बुला लिया तो ठीक है मैं जाना है, अब बुरा लगेगा ना अगर मैं ना गई तो, वो भी मेरे घर आई थी तो अब मुझे भी जाना ही पड़ेगा, इसलिए नहीं। अल्लाह की खातिर उससे मोहब्बत है तो अल्लाह की खातिर मुलाकात है, कोई और वो नहीं है कि अच्छा खाना खिलाएगी, बड़ी अच्छी जगह पे मुझे बुलाएगी, और फिर पता नहीं वहां पे मैं उससे कोई और भी अपने बिजनेस की भी बात कर लूं, यहाँ और कुछ ऐसी चीजें हमारी। लेकिन दोस्तियां भी कितनी सतही है ना, कभी दोस्ती इसलिए होती है वो खाना बड़ा अच्छा बनाती है हमें दावतों पे बुलाएगी, कभी ये दोस्ती होती है कि वो गिफ्ट बड़े अच्छे देती है, कभी ये दोस्ती होती है क्योंकि वो बड़ी फैशनेबल है इसलिए, कभी ये दोस्ती होती है कि उसके साथ कॉन्टेक्ट बना के रखेंगे तो हमारे काम करेंगे कल, कभी ये दोस्ती होती है कि वो उसका स्टेटस बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी कोई चीज है, कोई उसके पास कोई कुर्सी है, कोई ओहदा है या पैसा है तो उसकी वजह से, मतलब कितनी बेवकूफ चीजों की वजह से हम दोस्तियां भी बनाते हैं। यह हदीस बताती है कि अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करें, जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे पर खर्च करें। खर्च इसलिए नहीं कर रहे कि मैं इसको गिफ्ट दूं तो ये भी मुझे गिफ्ट दे, मैं इसको खाना खिलाऊं तो ये भी मुझे खाना खिलाए, मैं इसको कहीं लेकर जाऊं ताकि ये कल को मेरे मेरे लिए भी कुछ करे। वो कोई नेकी नहीं होती जो इन सारी चीजों के लिए हो, उसमें तो इखलास ही नहीं फिर। और ये कहना बहुत आसान है, मेरी दोस्ती तो अल्लाह की खातिर है, वाकई अल्लाह की खातिर है, फिर कोई मुझे अल्लाह की कोई बात बताता है तो मुझे फिर गुस्सा क्यों आ जाता है उसके पास? अगर अल्लाह की खातिर मैं उससे मोहब्बत करती हूँ तो फिर वो मुझे किसी बुराई के ऊपर मुझे तनबीह करे तो मुझे क्यों नाराजगी हो जाती है उससे कि मुझे क्यों ऐसे कह दिया। तो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन यौमि सू मिन साअति सू मिन यौमि सू मिन लैलति सू मिन साअति सू, उसमें एक आता है मिन जारि सू भी आता है, मुझे बुरे साथी से भी अल्लाह ताला अपनी पनाह में ले लेना। और ऐसी भी एक मसनून दुआ है कि अल्लाह मुझे ऐसा दोस्त से बचा जो कि मेरे ऐबों के ऊपर ही हर वक्त नजर रखे। और ये दुआ करनी चाहिए, एक और दुआ जो आसान दुआ है, सिर्फ चार लफ्ज है उसके अंदर, जिसमें अच्छे दोस्त को मांगा गया है, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालेहन। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह यस्सिर ली जलीसन सोलेहन, अल्लाह ताला मुझे नेक साथी अता फरमा और बुरे साथी से पनाह मांगे। अल्लाह ताला हमें वो साथी दे, वो नेक दोस्त अता फरमाए जो उसकी खातिर दोस्ती करने वाले हों, ताकि ये दोस्तियां आखरत में भी जाके हमारे काम आए। अल्लाह ताला इन आयात के ऊपर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين